उवाच पुरंजन ने कहा नूनम निश्चय ही तू तब अकृत पुण्या जो पुण्यात्मा नहीं है अभागा ते वे भृत्या दास येशु जिनको ईश्वराहा स्वामी शुभे हे शुभ लक्षणों वाली कृतागासु पाप करके आत्मसात अपनाकर कृत्वा करके शिक्षा उपदेश के रूप में दंडम दंड न युंजते नहीं देते। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। राजा पुरंजन ने कहा हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए दंड नहीं देता तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं और दासों के साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु और बालक किसी बदले की भावना से नहीं लेकिन प्रेम से दंडित किए जाते हैं। इस तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं बल्कि प्रेमवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी का आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पाप करने, जंगल में शिकार करने, उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होना पड़ता है तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इस तरह से सोचता है। जब भक्त किसी विषम स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। भागवत का एक श्लोक है, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतां विपाकं हृद्वाग् वपुर्वीर विदधान नमस्ते जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भाग। श्लोक से पता चलता है कि भक्त जीवन के पराजय को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिल रहा है। यदि कोई गलती करे सरकार या ईश्वर द्वारा दिया गया दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है। मनु संहिता में बताया गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और अगले जीवन में समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है तो वो इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वो फिर से दुष्कर्म को नहीं करता। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मैं आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूं। मुकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिण। गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर सकता है। अश्वी प्रभुपाद की समाधि में मैं मंगल आरती के लिए गया और प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया कि आज आपको हिंदी क्लास देना है। तो जैसे ही मंगल आरती के बाद जपा पूरा हुआ, जपा के बाद दर्शनार्थी के बाद मैं यहाँ पर आ गया। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं बोलने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण, थोड़ा बढ़ाना। तो आज के श्लोक में यहाँ पर दंड देने का महत्व बताया गया कि राजा पुरंजन बोल रहे हैं अपने पत्नी को कि जब स्वामी किसी मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार कर लेता है तो उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सजा मिलना ये भी एक भाग्य का लक्षण है। अधिकतर समय हम सोचते हैं कि सजा यानी ये एक घृणा का लक्षण है। जब कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता हमें, हम उसको सजा देते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग बताया गया है। यहां बताया गया है कि प्रेम का एक लक्षण है कि जो हमारे आश्रित हैं, जो हमारे पर डिपेंडेंट है, उसको सजा देना। और हम सब अल्टीमेटली भगवान पर निर्भर हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, और वो एक भगवान है जो सबको पालन कर रहे हैं। तो जैसे गीता भगवान बोलते हैं कि पिता हम अस्य जगत माता धाता पितामह, मैं ही पूरे जगत का माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, आई एम द मेंटेनर, मैं पालन करने वाला हूँ। तो ये पूरी प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और इस सृष्टि का निर्माण इस तरीके से किया गया कि जो जीव भगवान की सत्ता का विरोध करके भगवान की इच्छा के विरुद्ध इस भौतिक जगत में आए हैं, उनको धीरे धीरे वापस भगवान के चरणों में ले जाना। तो जो भी दुख विपत्तियां कष्ट दिखाई पड़ते हैं, ये भी भगवान की कृपा का स्वरूप है। ये भगवान का प्रेम से थप्पड़ मारना है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, तो प्रकृति के नियमों के द्वारा, प्रकृति के विधान के द्वारा भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर चीज में भगवान के हाथ को देखता है। वो जानता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर अणु में, हर परमाणु में भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर भजन में इस तरह बतलाते हैं, तुम्हें सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आप सारे ईश्वरों के ईश्वर हो ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा ब्रह्मा कोरे न सृजन, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तुम्हारा इच्छा विष्णु कोरे न पालन, आपकी इच्छा से भगवान विष्णु पालन करते हैं। आपकी इच्छा से शिवजी जो है वो सृष्टि का नाश करते हैं। आपकी इच्छा से माया देवी ये कारागार का निर्माण करती है, ये जेल का। तो ये भगवान की माया शक्ति बहुत विचित्र है, भगवान के ही शक्ति से कार्य कर रही है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो कई बार प्रश्न उठता है कि ये कैसे, ये जेल कैसे है? दिखने में तो लगता है जेल नहीं है, कारागार बोला गया। ये भौतिक दुनिया एक विशाल जेल है लेकिन ये जेल भगवान ने ऐसे बनाई है कि पता नहीं लगता जेल है। अगर आपको कोई कहे प्रभु जी आप जेल में हैं, बाहर आइए, कहाँ जेल में, मैं जहां चाहे जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं प्लेन से जा सकता हूँ, मेरे को पूरी स्वतंत्रता है। कि भगवान ने ऐसी जेल बनाई है कि इसकी दीवारें दिखाई नहीं पड़ती, इसकी दीवारें हमारे हृदय में ही हैं, हमारे स्वयं के भोग करने की इच्छाएं जो है, इट्स अ प्रिजन विदाउट वॉल्स, बिना दीवारों के ही। और जो भोग करने की वासनाएं हैं वही हमारी बेड़ियां हैं, वही हमको बांध के रखते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से कई डिवोटीज हरि नाम की व्याख्या कर रहे हैं बहुत सुंदर, कल वृंदावन चंद्र को भी बता रहे थे और उसके पहले सर्वम दूसरे डिवोटीज भी, आज शाम मैं भी थोड़ा और बताऊंगा। तो उसमें एक बताया गया है कि कृष्ण नाम करे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते है कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण नाम लेने का पहला फल है कि संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, और फिर कृष्ण नाम लेने का आगे का फल है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये माया देवी ने जो जेल रचा है वो बहुत बहुत ही फर्स्ट क्लास जेल है। जेल में भी अलग अलग सेल्स होते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। आप में से कोई कभी गए हैं जेल में? एक बार मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जेल में गया था लेक्चर देने के लिए, और वहां पे बड़े बड़े जिन्हें कुछ जेल्स होते हैं जो VIPs के लिए होते हैं, जब कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, मान लो कोई मंत्री, जब उनकी पूर्व लीलाएं प्रकट होती हैं, जब वो जेल में जाते हैं तो उनके लिए बढ़िया अरेंजमेंट किया जाता है। मतलब जेल में उनको टेलीविजन भी होता है, AC रूम होता है, स्विमिंग पूल होता है, लेकिन उस जेल के सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते, फर्स्ट क्लास जेल है। फिर कुछ जेल होते हैं सेकेंड क्लास, कुछ होते हैं थर्ड क्लास, जिसमें कैदियों को बहुत कष्ट कराया जाता है, पत्थर तोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन जेल तो जेल ही है। नहीं, आपको अगर चॉइस दिया जाए कि कौन सा जेल लेना है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तब कौन सा जेल में रहना चाहिए? तब जेल से बाहर निकलना चाहिए। शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। आप जानते हैं उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है उपदेश उपाख्यान। आप में से किसने देखी है किताब उपदेश उपाख्यान? इसमें कहानियों के माध्यम से वो बहुत ही गहरा सत्य शास्त्रों का निचोड़ हमें सुनाते हैं। जो साधुजन हैं, जो महात्मा हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिखते हैं, वो शास्त्रों का पूरा मंथन करके संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे अब दूध से दही, दही से फिर मक्खन और फिर से घी बनाया जाता है, जैसे महात्माओं की जो भजन लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा भी आप पढ़ लें, एक पन्ना भी, वो कई शास्त्रों के कई 10-15 पेजेस पढ़ने के बराबर हो जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक राजा के पुत्र और एक मंत्री के पुत्र और एक खजांची के पुत्र, ये तीनों जवानी की अवस्था में अपने राज्य की सीमाओं को छोड़ करके विदेशी राज्य में पहुंच जाते हैं। वे अब जानते हैं हर जगह पे सरकार का नियम होता है कि अगर आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहां के अधिकारियों से परमिशन लेना होता है, आजकल के जमाने में उसको वीजा कहते हैं। लेकिन ये बिना अनुमति के पहुंचते हैं वहां पर तो उनको तुरंत गिरफ्तार करा दिया जाता है, उनको जेल में डालते हैं। तो राजा के पुत्र को, क्योंकि वो राजा के पुत्र हैं, उनको सोने की बेड़ियों से बांधा जाता है। खजांची के पुत्र को सॉरी मंत्री के पुत्र को चांदी के बेड़ियों से और खजांची के पुत्र को लोहे की बेड़ियों से। अब इसमें तीनों में से कौन ज्यादा भाग्यशाली है? कोई अंतर ही नहीं है। जैसे भौतिक दुनिया एक विशाल जेल की तरह, फर्स्ट क्लास जेल मतलब इंद्रलोक, चंद्रलोक, या आज के जमाने में भी समझो कोई बहुत ही स्विट्जरलैंड जहां पर लोगों की आमदनी करोड़ों रुपए में है और बहुत ऐश से रह रहे हैं। ये सोने की बेड़ियां हैं, चांदी की बेड़ियां टिपिकल जो मिडिल क्लास फैमिली है, एक फ्लैट में रह रहे हैं, थोड़े बेसिक सुख सुविधाएं हैं। और लोहे की बेड़ियां मतलब जो कोई इतना गरीब है उसको रहने की सुविधा भी ठीक से नहीं है। तो हमारा जीवन जो है वो ऐसा बीत रहा है आजकल कि लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोहे की बेड़ी से चांदी तक पहुंच जाए और चांदी की बेड़ी से अगर सोने तक पहुंच गए तो जीवन सफल है। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में जाता है, पढ़ाई करता है, उसका उद्देश्य होता है कि मैं अच्छा जॉब प्राप्त कर लूं, अच्छा जॉब प्राप्त करके अच्छा धन कमा लूं और फिर सुखी पूर्वक जेल में रह सकूं। लेकिन वास्तव में बुद्धिमत्ता क्या है कि जेल से बाहर निकलना, ये समझना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी हूं, आप में से कई ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, और थोड़े समय के बाद हर आश्रम में व्यक्ति बहुत ही ऐसी स्थिति में पहुंचता है, कॉम्प्लेसेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मतलब संतोषजनक। उसको लगता है कि अभी मैं सुखी हूं, अभी मैं सेटल हो गया, अभी मुझे आश्रम में 5 साल हो गए, मेरा लॉकर भी है और मेरी सेवा भी फिक्स्ड है और मुझे मालूम है किस समय कहां पर प्रसाद मिलता है और थोड़े मेरे अथॉरिटी से अच्छी बात कर ली, थोड़ा घूम भी सकता हूं। या गृहस्थ भी 5 साल बाद सोचते हैं अभी चलो सेटल हो गए, बच्चे हो गए और अभी जॉब स्टेबल है। तो वास्तव में सत्य यह है कि अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो हमें हर समय सोचना है कि मैं गलत स्थिति में हूं, मुझे बाहर निकलना है। एक ईगरनेस होनी चाहिए, उत्सुकता। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो करोड़पति परिवार से थे, उनके पिताजी जमींदार थे, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार उनके अंकल, और बहुत ही उनके पास इतने सुख थे, लेकिन वो हमेशा कोशिश कर रहे थे कब मैं भागूं, मुझे गौरंग महाप्रभु से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। और उनके पिताजी इतने सतर्क थे, उन्होंने 10 उनको सेवक रखे थे, उनकी सेवा थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी को रोकना, फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी भाग जाते थे, बार बार उनको पकड़ कर लिया। एक इंटरेस्टिंग लीला है कि कैसे ये जो आज के जो श्लोक में बताया गया दंड देने की बात के बारे में और कैसे बातचीत करनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब भी जवान थे, अपने पिताजी के साथ रह रहे थे, तो एक दिन एक मुसलमान अफसर वहां पर आया और उसने पता लगाया कि रघुनाथ के पिताजी हैं, उन्होंने कुछ जो पैसे हैं जो सरकार को जमा करने थे उसमें से कुछ हैं जो जमा नहीं किए। तो अचानक उस समय आ गए, उसके पिताजी नहीं थे, चाचा जी नहीं थे, और रघुनाथ को गिरफ्तार कर दिया। बोले तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा कहां पर हैं, उनको बुला कर ले आओ, तुमको सजा दी जाएगी। और बड़े क्रोध से रघुनाथ को मारने जाते, लेकिन रघुनाथ का मासूम और वैष्णव चेहरा देखकर उनका मन बदल जाता। फिर भी वो क्रोध से बोल रहे थे, 20 लाख में से 12 लाख उन्होंने जमा किया था, उनको 15 लाख जमा करना था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत चतुराई से बातचीत की, वो कहने लगे कि वास्तव में मेरे पिता और आप दोनों भाई भाई हैं, भाई और भाई में कबहू कलह कबहू प्रीति, कभी कभी प्रेम होता है कभी कभी झगड़ा होता है। आज तो आप बड़े क्रोध में लग रहे हो, लेकिन कल मैं देखूंगा कि आप मेरे पिता और मेरे ताऊ जी आप तीनों साथ में बैठे होंगे, आप मेरे पालक हो, मैं आपका पाल्य हूं, जैसे मेरे पिता मेरी रक्षा करते हैं ऐसे आपका भी करते हुए है। इस तरह से उन्होंने इतने, और आप तो सारे शास्त्रों को जानने वाले हो, इतने मीठे मीठे शब्द बोले कि वो जो क्रूर व्यक्ति था उसका भी हृदय पिघल गया। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि अश्रु बहे, उसके आंखों से आंसू बह के पूरी दाढ़ी बढ़ गई जो उनकी दाढ़ी में, और वो कहने लगा रघुनाथ मैं तुमको अभी छोड़ देता हूं, लेकिन अपने पिताजी को बताओ कि वो तुम्हारा पिता निर्बुद्धि, थोड़ी कम बुद्धि है, अष्टलक्ष खाए, 8 लाख रख रहे अपने लिए। मैं ये नहीं बोला गलत है, हमारा किचु जुआ है, मेरे को भी थोड़ा प्रपोर्शन दे दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे रखना गलत काम है, लेकिन जो भी है पार्टनरशिप में होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिताजी से बातचीत की और मामला सॉल्व कर, मतलब प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि ये गुण है, एक्सपर्टीज रघुनाथ के अंदर था, कभी कभी भक्त को उपयोग करना पड़ता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सब मामला सॉल्व करने के बाद भी फिर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उनकी मदर ने बोला, उनकी मां ने पिताजी को बोला कि हम इसको रस्सी से बांध देंगे जिससे वो भाग नहीं सके। तो पिताजी ने कहा कि जिसको स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्य है और अप्सरा के समान सुंदर स्त्री है, ये बंधन नहीं बांध सकते, तो फिर रस्सियां क्या बांधेंगे। हमारा पुत्र बातुला हैला, बातुला मतलब पागल हो गया, इसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है, इसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल जाती है, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो हमें भी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, जिससे कि हमें संसार के बेड़ियों से निकल सके। और अंततः हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी समझ जाते हैं कि मैं महाप्रभु चैतन्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे पहले नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना होगा, और फिर वो नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सुंदर उत्सव मनाते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास जाके प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत मजाकी स्वभाव के थे, नित्यानंद प्रभु का स्वभाव ऐसा था कि कुछ बताना मुश्किल था कि अगला शब्द वो क्या बोलेंगे। नित्यानंद प्रभु उनको पास में बुलाते हैं, बोलते हैं चोर चोर अब दूर से ही प्रणाम कर रहे हो, इधर आओ, आज मैं तुमको सजा दूंगा। और सजा क्या है, मेरे सारे पार्षदों को छिला दही खिलाना। आज यहां बताया गया दंड, नित्यानंद प्रभु का दंड कैसा है, उनका दंड क्या है, दंड भी वरदान है, संसारी लोगों का वरदान भी दंड होता है। नहीं, संसारी लोग वरदान क्या देंगे, आपको बहुत पैसा मिले, बहुत सुख मिले, वो भी शाप ही होता है। अभी कल एक डिवोटी मुझे कल बता रहे थे कि कोई एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारी जमीन यहाँ पे वृंदावन में खरीदी की, बहुत बड़े बिल्डर हो गए, बहुत धन कमा लिया, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसके उसको इतना रिएक्शन मिल गया कि उसके परिवार में दुख ही दुख है। करोड़ों करोड़ रुपए कमा लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा के, लेकिन क्योंकि वो राधा रानी की भूमि का कुछ अपराध हो गए। तो ये जो दंड है और वरदान है ये समझना मुश्किल है। अभी नारद मुनि तो शाप दे रहे हैं नल कुबेर और मणिग्रीव को, उन्होंने देखा ये नग्न अवस्था में है और साथ देखकर भी अपने आप को नहीं संभाल रहे, तुमने शाप दे दिया, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। अभी पेड़ बनना तो बहुत बुरा शाप होता है, पेड़ बनना मतलब ऐसे ही खड़े रहना, पेड़ जो है कहीं चल भी नहीं सकते, कोई प्रोग्राम में भी नहीं जा सकते, है ना, पेड़ को जो मिल जाए वही खाना है, सूखी है ना मांगे जल, सूखने पे कुछ मांग भी नहीं सकते। और शास्त्रों में लिखा है पेड़ को पाप योनि बताया जाता है, लेकिन कहां पर पेड़, व्रज भूमि में, धन्य है व्रज भूमि, ऐसी धन्य है कि व्रज भूमि में चाहे कोई पेड़ हो या पक्षी हो या जंतु हो, भाग्यशाली। तो ये नारद मुनि ने जो दिया ये शाप था कि वरदान था, अगर वो शाप नहीं देते तो शायद वो उच्च लोकों में इंद्रतुप्ति करते रहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने शाप दिया इसलिए वो ब्रजभूमि में आए और अंततः साक्षात नंदनंदन के बाल्य लीलाओं को देख रहे थे और उस लीला में सहायता की उन्होंने, उखल बंधन लीला। तो बड़े बड़े संत भगवान के बाल्य का गुणगान करते हैं, वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वदिम्बा न चान्य वृणे हम वरिषदपिहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनास्या वीरष्टम किमन्य। शंकराचार्य, हालांकि शंकराचार्य तो मायावाद का प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी भगवान के बाल्य लीला का गुणगान करते हैं और वो बाल्य लीला में इन पेड़ों को भाग लेने का अवसर मिला। इसीलिए साधु के संपर्क में आना सबसे बड़ा वरदान है, चाहे कोई व्यक्ति न जानते हुए साधु का अपराध भी कर बैठता है तो भी अंततः वह साधु का संपर्क आने के कारण वो शाप भी बाद में वरदान ही हो जाता है। और संसारी व्यक्ति का संग जो है वो दुख का ही कारण बनता है, चाहे वो लाभकारी भी प्रतीत हो, कोई बहुत पुण्यात्मा भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त नहीं हो तो उसका संग लाभकारी नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसके क्षण का भी संग जो है जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त दिला सकते हैं। जिसे हम देखते हैं कि नारद मुनि भ्रमण कर रहे हैं प्रयाग में, और वहां पर एक शिकारी को देखते हैं, मृगरारी, जो जानवरों को बिना कारण मार रहे हैं। तो नारद मुनि उनको प्रेम से समझाते हैं कि आप जानवरों को मारना ही है तो पूरा मार दो, आधा क्यों मार रहे हो? नहीं, मुझे इसमें आनंद मिलता है। उसको आनंद मिल रहा था तड़पते हुए जानवरों को देखकर। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार लोगों का आनंद होता है, कुछ लोगों को आनंद होता है दूसरों के दुख में। फिर नारद मुनि के उपदेश पे उनका पूरा परिवर्तन हो गया। नारद मुनि बोले कि आप अपना धनुष्य बस तोड़ दो। अब मृगरारी के लिए धनुष्य तोड़ना मतलब जॉब छोड़ देना, बिजनेस बंद कर देना। नारद मुनि बोले आप चिंता मत करो, मैं आपका पालन करूंगा। नारद मुनि की आज्ञा से वो बैठकर जप करने लगे तुलसी के सामने। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुलसी के सामने जप करना चाहिए। ये अभी और भगवान की दया से अभी 4 या 5 दिन और हैं, ये हरि नाम के अभ्यास के लिए विशेष अवसर है। इन दिनों हम प्रयास करें कि अपने जप को और सुधारें, मात्रा में भी, क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी, कि वास्तव में नाम का ये प्रभाव है। पिछले कुछ दिनों से भक्त बतला रहे हैं कि वो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ने पहले क्या किया है क्या नहीं किया है, कोटि कोटि जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एक बार अगर सच्चे दिल से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांकेतम परिहास्यम च, कोई मजाक में भी बोलता है, कोई निंदा करते हुए बोलता है, कृष्ण नाम लेते हैं। कल मैं एक भक्त का एक वृंदावन, जो वृंदावन मंदिर के इतिहास की किताब है वो पढ़ रहा था, और एक भक्त उसमें बता रहे थे कि एक बार वो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद जी का प्रवचन हो रहा था, और प्रभुपाद जी का प्रवचन अंग्रेजी में हो रहा था तो भक्तों ने नहीं सुना। तो बाद में प्रभुपाद उनसे मिले और बोले आप प्रवचन में नहीं थे। प्रभुपाद को याद रहता था कौन था कौन नहीं था, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती इसलिए मैं नहीं था। प्रभुपाद जी बोले सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो मैंने बोला वो कृष्ण का नाम था, वही इंपॉर्टेंट था लेक्चर में ज्यादा। मतलब कितनी बार कृष्ण नाम आ रहा है वही लेक्चर की सफलता है। श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जब कोई न्यूज आर्टिकल आता, अखबारों में रिपोर्ट आता गौड़ीय मठ के बारे में, तो कहते थे कि गिनो इसमें कृष्ण का नाम कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 आर्टिकल थे, एक में निंदा की गई थी लेकिन कृष्ण का नाम आ रहा था 10 बार, और एक में प्रशंसा की गई थी ये कृष्ण का नाम आ रहा था 2 बार। तो बोले ये जो निंदा किए गए वो ज्यादा अच्छा आर्टिकल, क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम ज्यादा बार आ रहा है। तो ये भगवान के नाम को हम तर्क से समझ नहीं सकते। भौतिक एनालिसिस, जैसे कई डिवोटीज ने एक बार प्रयास किया था कि हरे कृष्णा महामंत्र को इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलोस्कोप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगा के एनालाइज करना कि इसके वेव्स कौन से जनरेट होते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपराध है। भगवान के नाम को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। नाम नामी अभिन्नत्वम, ये श्रद्धा से जाना जाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य ही जीववादो स्वयं एव स्फुरति। भगवान के नाम को भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। नाम लीला गुण धाम, जैसे मायापुर में एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कोई जमीन खरीदी की, सोचे मैंने जमीन ले ली है एक रानी की सहायता से। तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज को पता चला तो बोले ओ देखो कितने आश्चर्य की बात है कि ये भगवान की भूमि है जो चिंतामणि है, और ये व्यक्ति जो है सोच रहे कि मैं भूमि को खरीद लिया इसका मालिक बन गया हूं। तो ये जो बाबा जी महाराज जो शुद्ध भक्त हैं वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं ब्रज भूमि को या नवद्वीप भूमि को, और हम भी अगर इस धाम में सही चेतना में रहना चाहते हैं तो उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि चिंतामणि भूमि है। चिंतामणि प्रखर सदम शिव कल्प वृक्ष। चाहे बारहदशी से अभी थोड़ा परिवर्तन भी हो गया हो, लेकिन भूमि वही है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ये रमन रेती मतलब वो स्थान है जहां पर कृष्ण बलराम जी की लीला है, पहले भी हो रही थी अभी भी हो रही है। तो हर एक हमें शास्त्र चक्षुष बनना चाहिए, हर एक चीज को शास्त्र के माध्यम से समझना चाहिए, नहीं तो भौतिक दृष्टि देखें तो हम अपराध कर बैठते हैं, धाम अपराध नाम अपराध। तो ये न के न प्रकार न किसी न किसी तरीके से अपने मन को कृष्ण में लगाना। तो दंड के संदर्भ में और एक कहानी आती है चैतन्य भागवत में कि एक बार अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से गुरु तुल्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हैं अद्वैत आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य का बहुत आदर करते थे क्योंकि उम्र में भी वो बहुत बड़े थे। महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही अद्वैत आचार्य विवाहित थे, उनके बच्चे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ा आदर करते थे और ये बात अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं थी। वो सोचे थे कि भगवान मुझे भी अपना सेवक माने, मैं महाप्रभु का सेवक बनना चाहता हूं। भृत्य भृत्य भृत्येर भृत्य, तो मुकुंद माला स्तोत्र में बताया गया कि जीवन की उपलब्धि है कि भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। तो अद्वैत आचार्य ने एक योजना बनाई, वो सोचे थे मुझे ऐसा कुछ करना है जिसे महाप्रभु मुझे ताड़न करें, मुझे डांटें, मुझे अपने से हीन माने। तो उन्होंने एक योजना बनाई, वो जानते थे कि अगर महाप्रभु को क्रुद्ध करना है तो क्या चीज प्रचार करनी चाहिए, मायावाद। तो उन्होंने मायावाद के ऊपर एक 6 दिन सेमिनार रखा, ये ना, और जानबूझ के मायावाद प्रचार करने लगे। अरे समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला, वो नवद्वीप में थे। उसने लगे कि ये कैसे हो सकता है, अद्वैत आचार्य वो व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थनाओं से मैं धरती पे आया, ये वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर इतनी अनुकंपा की भावना है सब जीवों के प्रति, वो कैसे ऐसे गलत शास्त्रों का प्रचार कर सकते हैं योग वशिष्ठ। तो महाप्रभु अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तो वो नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर गए। रास्ते में वो एक गांव में गुजरे ललितपुर, नित्यानंद प्रभु बोले कि यहां पर एक सन्यासी है, हम उनके साथ उनके उनसे मिलेंगे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ गए, वो सन्यासी को प्रणाम किया और सन्यासी बोले आपको धन मिले, अच्छा पारिवारिक सुख मिले, आशीर्वाद देता हूं। इस उनके चैतन्य महाप्रभु को बहुत आश्चर्य, बोले आप ये क्या सन्यासी हो, सन्यासी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, आपको आशीर्वाद देना चाहिए कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण नाम में रुचि मिले, वैष्णव की सेवा मिले, ये आशीर्वाद देना चाहिए, ये भौतिक आशीर्वाद आप क्या दे रहे हो। तब ये सुन के वह सन्यासी बहुत क्रोधित हो गया, बोले आप कौन होते मुझे उपदेश करने वाले, मैं सब जगह पर जा चुका हूं, मैं सब क्षेत्रों को जानता हूं। और नित्यानंद प्रभु से बोले आप आज किसको लेकर आ गए, और ये छोटा बालक जो माँ के दूध पीने के समान वाला उम्र का है और ये मुझे सिखा रहा है कि क्या आदेश क्या क्या आशीर्वाद देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु उनको शांत करने के लिए बोले मैं आपकी महिमा को जानता हूं, और इस तरह उनको शांत किया। फिर वो कुछ फ्रूट्स लेकर आए और फिर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो सन्यासी जो वास्तव में सन्यासी नहीं थे, ढोंगी थे, उनके पत्नी बाहर आई। तो देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, और फिर वो सन्यासी बोलने लगा कि मैं कुछ आनंद लेकर आऊं आनंद। तो महाप्रभु ने पूछा ये आनंद का मतलब क्या होता है, कि नित्यानंद प्रभु को ये सब वर्ड पता थे। नित्यानंद प्रभु बोले आनंद का मतलब है शराब। तो महाप्रभु तुरंत नित्यानंद प्रभु का हाथ लेके भागे, बोले भागो यहां ऐसे स्थान में रहना नहीं है, और कपड़ों के साथ गंगा जी में छलांग लगाई। अब ये प्रश्न उठता है नित्यानंद प्रभु तो जानते थे ये सन्यासी का चरित्र ठीक नहीं है, फिर क्यों वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को ऐसे कपटी सन्यासी के कुटिया में ले गए। तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, वो सोच रहे थे कि इनको थोड़ी सेवा का अवसर मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने आप भगत की, उनको फ्रूट्स दिए, पीने के लिए पानी दिया, और इस सेवा के कारण उनको एक अज्ञात सुकृति की प्राप्ति होगी। फिर महाप्रभु दौड़ते हुए शांतिपुर की तरफ निकले जहां पर अद्वैत आचार्य प्रवचन कर रहे थे योग वशिष्ठ से मायावाद के ऊपर, महाप्रभु आ रहे हैं, देखकर अद्वैत आचार्य और जोर से बोलने लगे कि ये कि अद्वैतवाद ही सत्य है, हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं, इस तरह से। महाप्रभु ने जब आवाज सुनी तो इतने क्रोधित दौड़ते हुए गए उनके आसन के ऊपर, उनके गला पड़े, बोले अद्वैत अद्वैत। बोलो क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? अद्वैत बिल्कुल मुस्कुराते हुए बोले इसमें कोई शंका ही नहीं है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान दो आंखों के समान है और भक्ति तो आईने के समान है, आंखें ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आंख ही नहीं होगी तो आईने का क्या फायदा। महाप्रभु इतने गुस्से हुए कि उनको नीचे उतार दिया और अपने हाथों से जोर जोर से घूसा मारने लगे, और अद्वैत आचार्य हंस रहे थे, इतनी जोर जोर से मारे थे, अद्वैत आचार्य हंस रहे थे, नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे, हरिदास ठाकुर हंस रहे थे, और अद्वैत आचार्य की पत्नी रोने लगी, मत मारो मत मारो, ये बूढ़ा व्यक्ति है, मर जाएगा। और महाप्रभु जोर जोर से मार रहे थे और अद्वैत आचार्य हंस के बोल रहे थे आज आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया, चैतन्य रे दास मुई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई दासे रनु दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, मैं महाप्रभु के सेवकों का सेवक हूं। तब थोड़ी देर बाद महाप्रभु को पता चला कि यह सब ड्रामा चल रहा था, एक नाटक था। फिर अद्वैत आचार्य बोलने लगे अब कहां गए आपको मेरा प्रणाम करना, मेरी पूजा करना, अब आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। फिर महाप्रभु समझ गए और महाप्रभु बोलने लगे अद्वैत अगर यही करना था तो मुझे धरती पर क्यों बुलाया, मैं दूध के सागर में विश्राम कर रहा था, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं से धरती पर आया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बताने लगे अद्वैत आचार्य का सत्य कि वो सदाशिव है। बोले अद्वैत अगर कोई मेरी कितनी भी पूजा करे, अगर वो तुम्हारे प्रति अपराध करता है तो मैं उसका नाश कर देता हूं। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु इस तत्व का निरूपण करते हैं और अद्वैत आचार्य अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि कैसे सेवक बनना कितने सौभाग्य की बात है। और प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि अगर कोई सेवक गलती करता है तो स्वामी का कर्तव्य है उसको सजा देना, अगर सजा नहीं दे रहे मतलब उसको अपना नहीं मान रहे। तो मान लो सड़क पर दो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो माता या पिता जब देखेंगे दो बच्चे गलती कर रहे हैं तो अपने बेटे को डांटेंगे, दूसरों के नहीं। तो देखिए देखने जाए तो पूरा भौतिक दुनिया जो है ये भगवान की सृष्टि है, सब भगवान के संतान है, और ये जो दुख है संसार में, जो विपत्तियां हैं, वो भी भगवान की सजा है जीव को सुधारने के लिए। जैसे जब आप आग में हाथ डालते हो तो हाथ जलता है, अगर हाथ की गर्मी नहीं होती तो वास्तव में हाथ पूरा जल जाता है, लेकिन जो गर्मी महसूस होती है उससे व्यक्ति अपने हाथ को बचा लेता है। ऐसे इस संसार में जो भी दुख आ रहे हैं, विपत्ति हम देखते हैं, नेपाल में एक डेढ़ साल पहले इतना बड़ा भूकंप आया, बाढ़ आ रहे हैं, कई तूफान आ रहे हैं, कई सूखा पड़ रहा है, ये सब भगवान कृष्ण का तरीका है, प्रकृति के द्वारा भगवान सिखा रहे हैं। उत्तिष्ट जागृत हो, अज्ञान से बाहर निकलो, जीव जागो गौर चंद्र बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अपने संदेश को लेकर आए हैं, तुम्हारे लोहिते आमी हुई नो अवतार, आमी बिना बंधुवार के आछे तुम्हार। भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में बोलते हैं कि तुम्हारा लोहिते आमी, मैंने अवतार लिए आपके लिए, आपके सिवाय मेरा कौन बंधु है, महाप्रभु या कृष्ण के सिवाय कोई बंधु नहीं है, कृष्ण ही मित्र है। चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के द्वारा ये संदेश देते थे, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण की शरण लेना। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां बताते हैं, एनेचे औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। मैं औषधि लेकर आया, दवाई लेकर आया हूं, दवाई क्या है, महामंत्र। श्रील प्रभुपाद जब भी गृहस्थ आश्रम में थे, कुछ समय इलाहाबाद प्रयाग में थे, तो उनकी दुकान में दवाइयां बेचते थे। अब प्रभुपाद अपने गुरु भाई को बता रहे थे, मेरे पास वो दवाई है जो लोगों के सारे बीमारियों को मूलतः जड़ से नष्ट करने वाली है। और उन्होंने दवाई बताई, हरे कृष्ण महामंत्र, और बताया दवाई के साथ एक टॉनिक है, एक सीक्रेट है, तो डॉक्टर ओबीएल कपूर पूछे थे सीक्रेट क्या है, जैसे कोई रहस्य होता है, तो प्रभुपाद ने बताया रहस्य है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा है। इस भावना के साथ जब कोई व्यक्ति महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब फिर उस महामंत्र का पूरा प्रभाव प्रकट होता है। किसी भी तरीके से नाम लेने पर लाभ तो होता ही है, लेकिन अंततः जब भक्ति विनोद ठाकुर जैसे बोलते हैं कि आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तव पाछे, जब वैष्णव के चरणों में भिक्षुक के भाव से जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भगति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया से ही हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया, मैं भगवान के चरणों में भिक्षा मांगता हूं, ये महामंत्र लेते हैं। अब प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर वन शुड फॉल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड वाइल चैंटिंग द होली नेम। भक्ति विनोद ठाकुर के पद चिन्हों में चलते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं महामंत्र को स्वीकार करना, और इस तरह से हम परम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में और एक कहानी है दंड के बारे में। एक बार रथ यात्रा के समय जब भगवान गौरंग महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, भगवान बीच में सुंदर नृत्य कर रहे थे, चारों तरफ सारे भक्त देख रहे थे, महाप्रभु का नृत्य इतना सुंदर था कि कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता, जगन्नाथ जी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे भगवान गौरंग महाप्रभु का नृत्य। राजा प्रताप रुद्र कोने से देख रहे थे अपने साथी हरिचंदन के साथ, राजा इस कोने में थे, बीच में महाप्रभु थे और दोनों के बीच में श्रीवास ठाकुर खड़े थे, और श्रीवास ठाकुर बीच में खड़े होने के कारण राजा की दृष्टि में बाधा पड़ रही थी। तो राजा के निजी सचिव जिसका नाम था हरिचंदन, उन्होंने श्रीवास ठाकुर को इशारा किया आप थोड़ा साइड में हो जाओ, राजा ये वीआईपी, ये राजा देखना चाहते हैं। लेकिन श्रीवास ठाकुर इतने मग्न थे भगवान की लीला को निहारने में कि उनको बाह्य चेतना नहीं थी। तो एक बार दो बार तीसरी बार जब हरिचंदन ने उनको रोकने उनको इशारा किया उनके स्पर्श किया तो श्रीवास को थोड़ा सा डिस्टर्ब बुरा लगा, वो पीछे मुड़े और थप्पड़ मार दिया सबके सामने। राजा के सेक्रेटरी भी बहुत ऊंचा पोस्ट होता हरिचंदन, उसको बहुत बुरा लगा, कोई थप्पड़ मारे बुरा लगता है, कमरे में मारे तो उतना बुरा नहीं है लेकिन रथ यात्रा में मारे तो उनको इतना बुरा लगा कि वो बदले में कुछ बोलने वाले थे मारने वाले थे, लेकिन किसने रोक दिया? राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र बोले भाग्यवान तुम्हें इहार हस्त स्पर्श पाइल, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको एक वैष्णव का हस्त स्पर्श मिला, थप्पड़ खाइल है ना, आपको एक वैष्णव का थप्पड़ मिला, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हमारा भाग्य नहीं, मेरा इतना सौभाग्य नहीं। तब फिर हरिचंदन समझ गए कि एक वैष्णव का थप्पड़ मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य की बात। हम प्रभुपाद की लीला में दंड की कई कहानी देखते हैं, कई बार प्रभुपाद किसी भक्त पे क्रोधित होते थे, उनको डांटते थे, लेकिन जो बुद्धिमान भक्त थे वो समझते कि मेरे सुधार के लिए। चैतन्य चरितामृत में और एक कहानी है छोटा हरिदास की। छोटा हरिदास की गलती छोटी थी, वो एक माताजी से चावल मांगने के लिए गए थे, वो भी महाप्रभु के लिए मांगने के लिए गए थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। महाप्रभु को पता चला ये चावल कौन लेकर आया, उन्होंने पूछा, चावल बहुत अच्छा था, तो किसी ने बताया ये तो ये छोटा छोटा हरिदास ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, अभी छोटा हरिदास को बोलो इसके बाद वो मेरे सामने नहीं आ सकता। तो कई भक्तों ने जाकर निवेदन किया महाप्रभु से कि इसके अपराध को क्षमा कर दो, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति इस तरह के वैरागी वेश में होने के साथ एक स्त्री के साथ संभाषण करे अकेले में, मैं कभी सहन नहीं कर सकता। तो सारे भक्तों ने जाकर निवेदन किया, क्योंकि छोटा हरिदास भी बहुत दुखी थे और उन्होंने खाना बंद कर दिया था, वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, शास्त्रों का श्लोक बताते हैं, मात्रा श्वास्त्रा दुवित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपि करिष्यति। ये भागवत में से नौवें स्कंद में कि व्यक्ति को अपनी माता बहन या बेटी के साथ भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वान सपि करिष्यति, जो विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर देते। अब तो कहोगे तो मूर्ख व्यक्ति मोहित होगा, नहीं, बुद्धिमान भी। और हम शास्त्रों में कई घटनाएं देखते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे उनके साथ, बोले कि ऐसे अनेक संपत्ति रहित व्यक्ति हैं जो बंदरों जैसे वैराग्य रखते हैं, लेकिन वो इंद्र तृप्ति में छुप कर भाग लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई पार्षद इस तरह से रहे, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहता। फिर अगले दिन फिर भक्त गए और चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो अगर तुम बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, और इसके बाद परमानंदपुरी आए। परमानंदपुरी सीनियर थे। भक्तों ने क्या सोचा कि परमा सीनियर डिवोटी जाएंगे जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के लेवल पर हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी हैं और ईश्वरपुरी के लेवल पर परमानंदपुरी हैं। तो अगर परमानंदपुरी जाकर बोलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। तो परमानंदपुरी गए और उन्होंने निवेदन किया कि हरिदास को, छोटा हरिदास को क्षमा कर दो। महाप्रभु बोले, देखो आप सब यहां पे रहो, मोरे आज्ञा है मोई जाए आलालनाथ। मैं आलालनाथ जा रहा हूं, एकल रही ताहा गोविंद मात्र, मैं गोविंद को साथ में ले जाऊंगा। बोले गोविंद चलो आलालनाथ। तब सब डिवोटीज परम सोचने लगे, अभी क्या, परमानंदपुरी शीघ्रतापूर्वक सामने आ गए और भगवान को बोले, नहीं नहीं आप यहीं पे रुको, आप तो भगवान हो, आपको कौन, आप जो भी करते हैं लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। फिर सारे भक्त जाके छोटा हरिदास के पास गए और उनको बोला कि देखो तुम जिद मत करो, तुम कुछ भोजन कर लो, कोई बात नहीं। इस समय वो भगवान गुस्से में है, बाद में उनका गुस्सा कम हो जाएगा, फिर आपको स्वीकार कर लेंगे। तो छोटा हरिदास ने थोड़ा सा कुछ प्रसाद ले लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते तो छोटा हरिदास छिप के उनका दर्शन करते थे। ऐसे कई दिन बीत गए। जब छोटा हरिदास ने देखा कि भगवान कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे नियम में, एक दिन रात को वो चले गए और प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, एक्चुअली छोटा हरिदास भगवान के पार्षद थे। ये भगवान की लीला थी दिखाने के लिए कि जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं उनमें कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज यानी नियम के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकते। वो कोई बात नहीं है, सीनियर डिवोटी है, ऐसा नहीं। कोई जो व्यक्ति भगवान के जो भक्ति में प्रगति करने चाहते हैं उनको शास्त्र के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, चाहे वो नए भक्त हो या पुराने हो, जीनियर हो, सीनियर हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, शास्त्र के नियम का पालन करना जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे उन्होंने शरीर त्याग किया उनको दिव्य शरीर मिल गया और महाप्रभु जहां थे वहीं पर वो आकर कीर्तन गाने लगे और भक्तों का आवाज सुनाई पड़ रही थी। और महाप्रभु फिर बोले, हाँ अब किधर है छोटा हरिदास, अब वो आ सकते हैं। तो सब भक्तों ने बोला, पता नहीं एक साल से हमें पता नहीं कहां पर हैं। और महाप्रभु सब जानते थे, मुस्कुरा रहे थे। एक दिन किसी को आवाज सुनाई पड़ी, आवाज छोटा हरिदास की, मान लो कोई डिवोटी जो चला गया या इसकी मृत्यु हो गई है उसकी आवाज सुनाई पड़े थोड़ा डर भी लगेगा, ये ना। तो सारे भक्तों को छोटा हरिदास की आवाज सुनाई पड़ी। तो किसी ने बोला, अरे ये तो छोटा हरिदास की आवाज है, जरूर उसने आत्महत्या की होगी और अब वो ब्रह्म राक्षस बन गया। एक डिवोटी बोले, नहीं नहीं ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकता है, इसने तो भगवान की इतनी सेवा की थी, हरे कृष्ण मंत्र का जप किया था। इतने में एक भक्त प्रयाग से नवद्वीप में आए और उन्होंने यह समाचार सबको बता दिया, नवद्वीप के भक्तों को, कि छोटा हरिदास ने देह त्याग कर। और यह समाचार श्रीवास ठाकुर को पता चला। फिर श्रीवास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु से पूछने लगे, छोटा हरिदास कहां पर है आपको मालूम है? महाप्रभु ने जवाब दिया, स्व स्व कर्म फल भुक्त पुमान, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। तो श्रीवास ठाकुर ने जब पूरी कहानी बताई कि गंगा यमुना सरस्वती के पानी में उन्होंने प्रवेश किया, तो महाप्रभु, यहां बताया गया सुप्रसन्न चित्त प्रसन्न मुद्रा में बोले, प्रकृति दर्शन कैले यही प्रयाश्चित है। ये प्रयाश्चित का विधान ठीक है उस व्यक्ति के लिए। तो प्रभुपाद यहां बहुत सुंदर पर्पट में बताते हैं कि कई सारे लेसन्स हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास छोटा हरिदास को सजा देने से हमें सिखाते हैं कि संप्रदाय को शुद्ध रखना आवश्यक है। दूसरा भगवान ये भी दिखाते हैं कि पवित्र स्थान में देह त्याग करने से परम गति की प्राप्ति होती है। हालांकि छोटा हरिदास की गलती थी क्योंकि उन्हें प्रायश्चित किया और गंगा यमुना सरस्वती के संगम में शरीर त्याग किया तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तीसरा भगवान के शुद्ध भक्त का कभी अगर कोई गलती भी हो जाए तो महाप्रभु कृपा से अंत में उसको फिर से भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा चौथा भगवान सिखा रहे हैं कि उन भगवान के जो भक्त हैं जो उन्नत हैं उनका चरित्र आदर्श होना चाहिए। तो बोलते हैं सफेद कपड़े पे अगर छोटा सा भी निशान हो तो बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है। ऐसे महाप्रभु ये कुछ शिक्षाएं हमें सिखाते हैं। तो ये और भी कई कहानियां शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु कैसे जब इवन गुंडीचा मार्जन कर रहे होते, जब झाड़ू लगा रहे होते, सबको बोलते झाड़ू लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो आधा लगाया पूरा लगाया, कोई ठीक से नहीं लगाता तो महाप्रभु बोलते इनको सजा देनी पड़ेगी। जिन्होंने महाप्रभु हरेक को बोलते थे कि आपने कितना कचरा एकत्र किया उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाने होंगे, और जिसने बहुत कम एकत्र किया है इसका मतलब ठीक से सफाई नहीं की है, उसको सजा देनी होगी। उसको सजा दी जाएगी क्या, उसको कुछ मालपुआ और खीर देना होगा, और जो अच्छा सफाई करते उनको इनाम मिलता, वो क्या था, वो मालपुआ और खीर। तो महाप्रभु हरेक चीज में बहुत पूर्ण थे, यानी अपने भक्तों के सुधार में गलतियों में भी प्रेम पूर्वक उनको सुधारते थे। और अंत में मैं एक छोटी कहानी कह के अंत करूंगा। एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय की कोई ज्यादा गलती नहीं थी, लेकिन छोटी उम्र में जब नवाब हुसैन शाह छोटे बालक थे वो उनके अंडर कार्य करते थे, और एक दिन नवाब हुसैन शाह, उस समय नवाब नहीं थे वो साधारण हुसैन शाह, तो सुबुद्धि राय ने देखा कि वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे, तो अपनी छड़ी लेके उनको ऐसे थोड़ा पीट दिया। बाद में हुसैन शाह जब बड़े हो गए तो उनकी पत्नी ने देखा कि पीठ के ऊपर निशान है, तो उन्होंने पूछा ये निशान कहां से है, तो बोले मेरे को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में मारा था क्योंकि मैं कुआं ठीक से नहीं खोद रहा था। हाँ आपको, सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने, सुबुद्धि राय ने मारा था। तो आपको सुबुद्धि राय ने मारा है, इसका बदला लेना चाहिए, प्रेम से मारा था उसमें कोई गलती नहीं, नहीं, नहीं आपको बदला, इसको मृत्यु दंड दी जाए। सुबुद्धि राय ने कहा, नवाब हुसैन शाह ने कहा कि सुबुद्धि राय मेरे पिताजी के समान है, उन्होंने मारा तो कोई दोष नहीं है, सजा देनी है तो मृत्यु दंड नहीं, उनको एक और सजा दी जाएगी, और वो है उनको मुसलमान बना दी। उस समय बहुत आसान था, कोई पानी लेकर फेंकते बस मुसलमान भाव मुसलमान, तो मुसलमान बना दे। तो सुबुद्धि राय पे पानी डाल दिया गया, उनको बोला आप मुसलमान हो गए, लेकिन सुबुद्धि राय को बहिष्कृत कर दिया गया ब्राह्मणों की सभा से। अंत में वो ब्राह्मणों के पास गए, मैं क्या करूं, मेरी तो गलती नहीं है लेकिन प्रायश्चित क्या करूं। सबने बोला आप गरम गरम घी पी लो, और गरम गरम घी पीने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, अगला जन्म हिंदू परिवार में हो। तो सुबुद्धि राय बोले ये तो ठीक नहीं लग रहा। वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और पूछा मैं क्या प्रायश्चित करूं। चैतन्य महाप्रभु बोले कोई प्रायश्चित, एक ही प्रायश्चित है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम खलो नास्त्येव 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 गतिर्। आप जाओ और वृंदावन में जाके हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वृंदावन में जप करते, और एक लास्ट पॉइंट है, वे जप करने के साथ साथ सेवा भी करते थे। कई बार डिवोटी सोचते हैं कि जप करने का मतलब सिर्फ बाबा जी बन जाना, नहीं, प्रभुपाद चाहते थे हम सेवा भी करें। तो क्या सेवा करते थे, किसी को पता है क्या सेवा करते थे? वो लकड़ी लेकर आते थे काट के, और लकड़ी बेच के जो पैसे मिलते उसे वैष्णव के लिए चावल और दही खिलाते थे, क्योंकि जो बंगाल से वैष्णव आते थे वृंदावन में उनको रोटी की आदत नहीं होती, यहाँ रोटी खाने से पेट खराब हो जाता, तो उनके लिए चावल और दही ये अपने भक्तों को प्रेम से खिलाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी कथाएं हैं दंड के बारे में। हमें जब भगवान के सामने हम जाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं बहुत अपराधी हूं, अमर जीवन सदा पाप रत नाही को पुण्य रलेश, हे भगवान आप मुझे दंड दो या रक्षा करो, जो भी करो जिससे मेरी भक्ति आगे बढ़े, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। इस भावना के साथ हमें हरि नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या टीका? समय हो गया। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री हरि नाम प्रभु की जय।